इतना मोह है ही तो काहे को जा रहे हो राम जी से मिलने, सिंहासन पे बैठो राज करो। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो मैं राजा बन जाता, तो फिर छोड़ो जब आपकी नहीं है तो। भरत जी बोले अगर संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चला जा, ना तो मैं राजा बन सकता हूं ना छोड़ सकता हूं, मेरी होती तो छोड़ देता, मेरी होती तो राजा बन जाता, संपत्ति सब रघुपति के आई, इसलिए ना जग छोड़ो ना हरि भूलो कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पाने में। यह ही संपत्ति भगवान। अच्छा एक बात बताओ, वन में जा रहे हो? हाँ भगवान वन में मिलेंगे, बिल्कुल। तो वन भगवान का है? हाँ। तो घर किसका है? जब वन भगवान का है तो घर भी भगवान का है, और घर की व्यवस्था करके जब वन में जाओगे तभी तो भगवान को मुंह दिखाने लायक रहोगे। भरत जी की बात मान ली गई। कुछ लोग ऐसे ही त्यागी हो जाते हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव हुआ और लोग उछलने कूदने नाचने लगे उत्साह में भरकर, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। एक सज्जन मंच पर ही चढ़ गए, जय कन्हैया लाल की, और उछले कूदे जय कन्हैया लाल की, और रुपए बरसाए, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, और रुपए बरसाए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी ने तो कभी चवन्नी नहीं दी, सत्संग का क्या पूरा असर इसी पे हुआ है? हे भगवान, क्या कलयुग चला गया? एक आदमी बोला रुको रुको जरा हमें गौर से देखने दो, और उसने जब गौर से देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही जय कन्हैया लाल लुटाओ, जय कन्हैया लाल। ऐसा तो कोई भी त्यागी हो जाए, अपना है ही नहीं, और हम उसी का त्याग कर रहे हैं जो अपना है ही नहीं। जैसे ही पता लगता है कि भगवान का है वैसे ही त्याग का अभिमान विदा हो जाता है। श्री भरत जी ने फैसला कर लिया, सवेरे चलेंगे सवेरे। अब सवेरा हुआ, भरत चले चित्रकूट हो नामा राम को मनाने,
भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने,
राम को मनाने सीताराम को मना, भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाने,
भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाने।
भरत जी के साथ सब जा रहे हैं, कितना बढ़िया संकेत है। भरत जी संत हैं, संत वो जिसके साथ सब चल सकें, संत वो जिसके साथ सब चल सकें, अथवा संत वो जो सबको साथ लेकर चल सके। सबकी सवारियां अलग अलग हैं, कोई हाथी पे बैठ के जा रहा है, कोई घोड़े पे बैठ के, कोई रथ में, कोई डोली में, कोई पैदल। अरे भैया भले ही सबके साधन अलग अलग हों पर लक्ष्य तो एक ही है। इसी तरह भले ही सबकी साधनाएं अलग अलग हों पर परमात्मा प्राप्ति ही तो लक्ष्य है। इसलिए अलग अलग साधनाओं से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर सब एक ही दिशा के यात्री हैं। इसलिए भरत जी के साथ सब चल रहे हैं। हाथी पर बैठकर जाने वाला कौन है? हाथी पर बैठकर जाने वाला। हाथी की एक विशेषता है, आंख छोटी सिर बड़ा है, अर्थात जिसकी दृष्टि सूक्ष्म हो और विचार बड़ा हो यही ज्ञान मार्ग है। सूक्ष्म दृष्टि विचार बड़ा, और हाथी झूमते हुए चलता है। एक महात्मा कहते थे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, चलता झूमते झूमत आवे हाथी। अच्छा, लेकिन एक बात आपने देखी होगी, हाथी अगर किसी गांव में आ जाए, जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु होते हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और हाथी को किस रूप में देखते हैं? गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी, जय हो। छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। सचमुच हमने देखा है गांव में वृद्ध लोग, जय हो गणेश जी, छोटे छोटे बच्चे, जय हो गणेश जी। जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं गणेश जी के भाव से, शायद और किसी के जोड़े जाते हैं। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, यह तो सही है कि जितने हाथ इसके जोड़े जाते हैं किसी के नहीं जोड़े जाते, पर विडंबना यह कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, गांव भर के वृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे, और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि कुत्तों को क्या परेशानी हाथी से, कोई बराबरी का मामला भी नहीं। अच्छा, कुत्ते तो हमारी भाषा समझते नहीं, हम उनकी नहीं समझते। अगर भाषा समझते तो हम जरूर पूछते हैं कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी। तो हमें लगता है कि अगर पूछते तो कुत्ते एक एक ही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं, फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे, बस इतनी सी बात है। और मानो ये संकेत है कि जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। अच्छा, एक बात और है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंकें, आगे आके भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं, आगे आके भौंकते नहीं पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन एक बात और है, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमते हुए मस्ती से। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है, भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है, इसलिए चाल में मस्ती बनी रहती है। जो निंदा और स्तुति में समान रह सके वही ज्ञानवान है। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी, और कुछ लोग घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना
इंद्रियों के न घोड़े भगे,
इन पे संयम के दिन रात घोड़े
लगे
इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे
जीवन रथ को सुमारक चलाते चलो
जीवन रथ को सुमारक चलाते चलो
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो
इंद्रियों को घोड़ा बताया और घोड़ा बिना लगाम के ठीक नहीं चलता है इसीलिए घोड़े के साथ दो लोग जुड़े होते हैं एक वो जो घोड़े की सेवा में होता है और एक वो जिसकी सेवा में घोड़ा होता है तो घोड़ा जिसकी सेवा में होता है उसे रईस बोलते हैं और जो घोड़े की सेवा में होता है उसे सईस बोलते हैं तो हमें यह देखना है कि हम इंद्रियों की सेवा में हैं तो सईस हैं और इंद्रियां अगर हमारी सेवा में है तो हम रईस हैं हम स्वामी हैं संयम बड़ा आवश्यक इंद्रियों के लिए एक सज्जन एक कहानी सुना रहे थे कि राजा के पास एक बकरी राजा कहता था 1,000 रुपये इनाम कोई बकरी को तृप्त कर दे सो महाराज जो भी जाए दिन भर चरावे बकरी को खूब खिलावे और शाम को आवे राजा कहे परीक्षा करूंगा सो हरे भरे पत्तों की डाली दिखाए बकरी कितनी भी खाई पियो तुरंत मुंह मारे राजा कहता देखो भूखी रह गई कोई तृप्त नहीं कर सका एक महात्मा किसी के घर ठहरे थे उन्हें पता लगा बोले कल मैं जाऊंगा गए राजा ने प्रणाम किया बोले आशीर्वाद तुम्हारी बकरी को तृप्त करेंगे अरे महाराज आपका को नहीं ले गए एक हरे भरे पत्तों की डाली ले गए एक डंडा ले गए आ उसको ऐसे दिखा में और जो दिखा उसको मुंह मारे एक डंडा इधर से उधर दिखा उधर से डंडा दिन भर पिटाई की खाने तो दिया नहीं पेट पिचक गया मुंह सूज गया शाम को डगमग करती आई महात्मा बोले राजा साहब तुम्हारी बकरी तृप्त है राजा ने कहा कि इसकी तो हालत दिख रही है बोले आप तो परीक्षा करो अब राजा ने जो हरे भरे पत्तों की डाली दिखाई महात्मा डंडा लिए खड़े बकरी का दिन भर का अभ्यास तो दिखावे उधर वो कर ले इधर दिखावे इधर वो कर ले बोले 1,000 रुपये इनाम दे राजा बोले सो तो ठीक लेकिन ये तृप्त किया कैसे इसे बोले इसे खिला पिला कर तृप्त किया ही नहीं जा सकता बुझे कि काम अगनि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते ये कामाग्नि बुझने वाली नहीं है विषय वासना के घी से फिर इस पे तो संयम और ये तो एक बकरी की बात है यहां तो ये इंद्रियां बकरियां ही बकरियां हैं इन पर संयम तो जो घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं ये योगी हैं हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं और जो रथ में बैठकर जा रहे हैं ये धर्मात्मा हैं क्योंकि मानस में धर्म रथ का वर्णन है जय जय हो सुस्यंदन आना सौरज धीरज तेई रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका तो धर्म रथ में बैठकर जा रही धर्मात्मा है अच्छा भैया और सुनो जो डोली में बैठकर जा रहे हैं ये भक्त है सचमुच आप पैदल चलो जिम्मेवारी आपकी है दाएं देखो बाएं देखो नीचे भी देखो नहीं छिलका पड़ा हो केले का पांव गिरे तो फिसल जा है ना दाएं बाएं इधर उधर मोटरसाइकिल बचाओ साइकिल वालों को बचाओ पैदल चलने वालों को बचाओ कुछ लोग भी बड़े अजीब होते एक आदमी सिर झुकाकर चलता था तो किसी से भी टक्कर हो ही जाएगी जब सिर झुका के चले और जिससे टक्कर होती सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो लोग हंसते थे कि खुद टकराता गधा हमें बोलता है। एक दिन सिर झुकाया जा रहा था, गधे से ही टक्कर हो गई। तो गधे को देखकर बोला कि बड़े जो देखा, बोले अब आप तो आप ही हो आपसे। अरे और तो और ऊपर भी देख के चलो। एक आदमी छत पे टहल रहा था, दूसरा आदमी पैदल नीचे से निकला, पान भरे था मुंह में, ऐसी पीक चलाई उसके सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? तो बोला तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो? उसने कहा कि गनीमत है कि ऊपर नहीं देख रहे, इतने सिर का स्थान मुंह ही होता। तो कितनी जिम्मेदारी है, कठिनाइयां कि नहीं? और आप एक काम करो, कोई जिम्मेवारी नहीं, आप पीछे बस आ रही और टिकट लेकर आप बैठ जाओ। मैं भी आपसे कहता हूं अपने बल पर चलोगे, कई परेशानियां पार करनी पड़ेंगी, लेकिन भगवान की शरणागति रूपी बस में विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। सीट पर बैठे चाहे अखबार पढ़ो, चाहे सो जाओ, चाहे आंख खोलो चाहे आंख बंद करो, दाएं देखो बाएं देखो, अब जिम्मेवारी आपकी नहीं, अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। और वो बस चलाने वाले भगवान ने स्वयं कहा, बस की बात नहीं, उदाहरण दूसरा दिया, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनका उद्धार मैं करता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। और सचमुच भगवान ने अर्जुन को तमाम उपदेश दिए, ज्ञान का, भक्ति का, कर्मयोग का, योग का। अर्जुन घबरा गए कि हम क्या करें। भगवान ने कहा निर्णय करो। बोले बड़ा कठिन है निर्णय, आप सबको बराबर बताते हो ज्ञान की विशेषता, भक्ति की विशेषता, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं क्या करूं। भगवान बोले अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं कुछ मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। ज्ञानी के उद्धार की जिम्मेवारी ज्ञान की, भक्त के उद्धार की जिम्मेवारी भक्ति की, कर्मयोगी के उद्धार की जिम्मेवारी कर्मयोग की, लेकिन भगवान के शरणागत की जिम्मेवारी भगवान की। ये डोली में बैठकर जाने वाले भक्त हैं। मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप हों,
मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप हों,
बेखबर गर श्री राम आप,
मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप।
मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप होंगे,
मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप होंगे,
बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे,
बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे,
मैं राम नाम रट के फिर भी सहूंगा दुख तो,
करके सहूंगा दुख तो,
बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे,
बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे,
रुसवाइयों से कैसे गुमनाम आप होंगे,
रुसवाइयों से कैसे गुमनाम आप होंगे,
नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी,
बरसात भी तो होगी,
घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे,
घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे,
राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के,
राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के,
राजेश है तुम्हारा के दोष गुण के, आगाज आप होंगे अंजाम आप होंगे,
आगाज आप होंगे अंजाम।
लेकिन कुछ लोग पैदल जा रहे हैं,
बंसी राम समुझी मन माही,
बंसी राम समुझी मन माही,
सानुज भरत पया देही जाई,
सादर भरत
भरत जी पैदल पैदल जा रहे हैं। अरे ये पैदल चलने वाले कौन है? पैदल चलने वाले दो पांव से चलते, एक पांव उठाया दूसरा रखा फिर ये रखा फिर ये, दो पांव से चलने वाले मानो ये राम नाम रटने वाले हैं। दो अक्षर का राम नाम रेमन, तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले, ये राम नाम रखने वाले हैं। अच्छा ये बड़े अच्छे हैं, ये आपको भले ही सामान्य लगे पर ये सामान्य नहीं है।
रेलगाड़ी के एसी फर्स्ट क्लास डिब्बे में आपका रिजर्वेशन होगा, अगर पैसा हो उससे कम हो तो एसी टू टीयर थ्री टीयर, उससे कम हो तो फिर थ्री टीयर, और उससे भी उतना भी ना हो तो फिर जनरल कोच। हे भगवान, रेलगाड़ी का जनरल कोच माने जबरन कोच। हमने देखा लोग घुसते हैं बड़ी भीड़, उधर बिहार और उस तरफ की बोली बड़ी अद्भुत, ढुकी ढुकी, अब कहां ढुके वो जगह हो तब तो,
चलो 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 घुसो घुसो रेलगाड़ी छूट गई, चलो चलो चलो, अब क्या करे आज आदमी के ऊपर आदमी बुरी तरह, पर एक आदमी को उसमें भी जगह नहीं मिली, खड़ा रहा। जब सब बैठ गए भीतर घुस गए तो थोड़ी सी जगह देखकर वो खिड़की में ही बैठ गया, दरवाजे में पांव अपने ऐसे कर लिए, अब नीचे न गिर जाए कोई धक्का मार दे तो जो छड़ें लगी रहती दो पकड़ ली, मजबूती से पकड़े बैठा। सबसे कमजोर यही है तो कमजोर, लेकिन रेलगाड़ी जब अपने गंतव्य पर जाकर खड़ी होगी तो सबसे पहले प्लेटफार्म पर उतरेगा कौन? यही दो छड़े पकड़ने वाला जो दरवाजे में ही बैठा है। मैं भी कहता हूं कि भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि बड़े बड़े लोग मंजिल पर बाद में पहुंचेंगे, पर नाम रटने वाला पहले पहुंच जाएगा। इसीलिए राम नाम की महिमा है, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो,
जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो,
मान के बाबा तुलसी की वाणी राम राम रटते रहो,
मान कर बाबा तुलसी की वाणी
राम राम रटते रहो,
मान के बाबा तुलसी की वाणी राम राम रटते रहो।
दुई अक्षर को मंत्र मनोहर,
दुई अक्षर को मंत्र मनोहर,
सुमिरत शंभु भवानी राम राम
रत शंभु भवानी राम राम रटते रहो,
नाम जपत मन मगन पवन सुत,
नाम जपत मन मगन पवन सुत,
तन पुलक शिथिल बरबानी राम राम रटते रहो, जपत ही दैहिक दैविक भौतिक मिटे परेशानी, राम राम रटते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नाम तजे सम हानि, राम राम रटते रहो।
जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो।
जन राजेश नाम जो सुमीरे,
जन राजेश नाम जो सुमीरे,
सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो।
सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो।
माता कौशल्या ने देखा श्री भरत जी के पैदल चलने से सभी लोगों ने सवारियां छोड़ दी, पैदल पैदल चलने लगे। संदेश गलत चला गया। कौशल्या माता से ने भरत जी से कहा कि भरत सवारी पर बैठ जाओ, तुमको पैदल चलते देखकर सबने सवारियां छोड़ दी। भरत जी ने रोकर कहा, मां मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, बैठ अश्व पर जाऊं मैं पैदल गे रघुनाथ, जहां स्वामी के पग परे तहां सेवक को मात। माता कौशल्या बोली, भरत तुम्हारा अवतार लोगों को सुख देने के लिए है। मां की आज्ञा मानकर बैठ गए, गुरु जी के साथ रथ में सब सवारियों से चलने लगे। रथारूढ़ होकर श्री भरत गुरुदेव के संग आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोग अपने अपने साधनों से जा रहे हैं, पर निखात राज गुह उनको समाचार मिला भरत जी आ रहे हैं। दूसरे ने आके कहा, सैन संग चतुरंग नथोरी, बड़ी भारी सेना है उनके साथ। आप तो निखात राज को क्रोध, राम जी को अकेला जानकर भरत जी आक्रमण करने जा रहे हैं। सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न दे। समर मरण पुण सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, कुटिल कुबंध जो पे जिये न हो तो कुटिलाई, तोकत लीन संग कटकाई। अजय देखो, श्री निखादराज श्री लक्ष्मण जी के शिष्य हैं, उनके गुरु जी लक्ष्मण जी, और गुरु शिष्य की यही विशेषता, इतना अंतःकरण एक शिष्य के बोलने में गुरु की ध्वनि मिलती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, और ये कहते हैं, सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन देऊं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कहां लग सही रही मन मारे, नाथ साथ धनो हाथ हमारे। और निखात राज कहते हैं, समर मरण पुण सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, कुटिल कुबंध को अवसर ताकि, जाने राम वनवास एकाकी। और निखात राज कहते हैं, जो पे जिये न हो तो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। भाइयों तैयार हो जाओ, बाजे बजे। लेकिन इतना कहत छींक भए बाए, इतना कहत छींक भए बाए, इतना
कहे वो सगुनियन खेत सुहाए इतना कहते ही बाई ओर छींक हुई। ज्योतिषी बोले बाई ओर छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी। सगुण विचार की यही रीति है। पर एक वयोवृद्ध ज्योतिषी ने कहा बाई ओर छींक होना शुभ है। ज्योतिषी बोले कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि युद्ध में विजय मिलेगी। वृद्ध ज्योतिषी ने कहा जब बाई ओर छींक होना शुभ है तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। और मैं आपसे सही कहूं वृद्ध की बात हमें माननी चाहिए। जीवन भर की अनुभव संपदा होती है उनके पास। एक गांव में लगी आग, सब गए भाग, कौन रुके, दो मजबूर जलने के लिए, एक लंगड़ा एक अंधा। अंधा उधर ही भागे जिधर आग लगी, और लंगड़ा बेचारा भाग ना पाए, आग लगी देख। तब लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम अपने कंधे पे हमें बिठा लो, आंखें तुम्हारी, आंखें हमारी, चरण तुम्हारे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आग से बच गए। ये कहानी है पर मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भ में बड़ी उपयोगी। आज भी चारों तरफ अशांति की आग लगी है, दो जलने के लिए मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा कौन लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अंधा उधर ही भागता जिधर आग लगी, लंगड़े को बेचारे को भाग नहीं पाता, दिख तो रही। अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, उत्साह के चरण युवक के हों, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। इसलिए वृद्धों की बात महाराज मनु कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील होकर जो वृद्धों का सम्मान करता है उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। एक बार एक रेलगाड़ी के डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी बैठा बेचारा, माला लिए राम 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 राम। उसी में कुछ लड़के चढ़े, हे भगवान, उनका नाम ही लड़के, जो रह ही नहीं सकते, कहीं इससे लड़के कहीं उससे लड़के, घर वालों से लड़के बाहर वालों से लड़के, घर वालों से लड़के बाहर जाएं, बाहर वालों से लड़के घर में आए, लड़के 10-15 लड़के बैठ तो गए डिब्बे में, एक बूढ़ा आदमी बैठा वो बैठे। लड़के बोले बड़े बोर हो रहे। कहा कि बोर क्यों हो रहे भाई, गाड़ी चलते रहो, बड़े बोर हो रहे, क्या करें। बोले कुछ ना हो तो जंजीर खींचो, गाड़ी रोको, लिखा है 500 रुपए जुर्माना है, 6 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। अरे हम लोग 15 लड़के हैं, 500 रुपए नहीं जोड़ सकते। सबने किया इकट्ठा, किसी ने 100 किसी ने 500 किसी ने 3000 रुपए हुए। उनमें एक प्रमुख जो नेता था उनका, उसकी जेब में रख लिया, कहा अब जंजीर खींचो, पहले लगेंगे नहीं, लगेंगे तो पैसा तो है। एक लड़का बोला कि बिल्कुल नहीं लगेगा, क्यों, जंजीर हम खींचेंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब बूढ़े ने बिचारी ने बहुत हाथ जोड़े कि ऐसा मत करो भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, बड़ा अच्छा, खींचो। जंजीर खींच दी, स्पेशल चेकिंग, वो लड़के को बुला रहे, इस बूढ़े ने खींचा। बूढ़ा ने सोचा कि हम कितने ही कहेंगे नहीं खींची, मानेगा कौन। भगवान ने ऐसी सुमति दी, वृद्ध अधिकारियों ने डांट कर पूछा कि तुम बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती, जंजीर क्यों खींची। बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्या मजबूरी थी, हमारे पास 3000 रुपए थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए, इसकी जेब में रखे, और तो उसी के सामने गिन कर रखे गए थे, निकले आए। अधिकारी ने कहा धन्यवाद,
इसी के लिए जंजीर होती है, तुमने अच्छा काम किया। ईमानदारी का जमाना, 3000 रुपए मिल गए, लड़के सब पकड़ गए। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, पुलिस वाले लड़कों को पकड़ के ले जा रहे। सो लड़के बूढ़े को देखकर ऐसे ऐसे जो करें, सो बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ घुमाते ही बोला कि बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बहुत चले देखे। वृद्ध की महिमा होती है। एक आदमी ने अपनी बेटी के विवाह में शर्त रखी कि हम विवाह तो करेंगे पर बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। युवक बोले क्या करेंगे बूढ़े जाकर, घर बैठे राम राम करें, इनको क्या जरूरत, हम करा ले आएंगे विवाह। सब बूढ़े मान गए पर दूल्हे का नाना बोला ना ना हम तो चलेंगे। अरे वो बारात वापस कर देगा तो बोले छिपा के ले चले। इंतजाम किया कार में जहां सामान रखते हैं नाना जी, वहां पहुंच गई बारात। कन्या के पिता ने अपना एक आदमी भेजा, पता लगाओ बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। कोई नहीं मिला तो उसने कहा कोई बूढ़ा नहीं। कन्या के पिता ने कहा कि हमारी ओर से संदेश दे दो, क्या हम विवाह करने के लिए तैयार हैं पर हमारी एक शर्त है, हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहना चाहिए। अब लड़कों ने बड़ी अकल लगाई, पूरी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आई, शुद्ध दूध पानी वाली नदी में कैसे, और इतना दूध कहां से आए, फिर ये पानी, फिर ये, अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव। तो बोले बारात ले चलो वापस। तो कहा जब बारात लौट रही तो नाना के काहे को प्राण लियो से निकाल ले। तो नाना से कहा कि निकाल आओ। नाना जी बोले क्यों, बोले बारात लौट रही है, उसने शर्त ऐसी रखी नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना बोला ना समझो, जरा जरा सी बात पे बरातें लौटती, ये जरा सी बात है, बिल्कुल जरा सी। कैसे, नाना बोला हम तो यही छिपे हैं, तुम जाकर कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है और हमारी भी शर्त है नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा दें। कन्या के पिता के पास खबर गई, उस कन्या का पिता बोला कि जरा गौर से देखो बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। तो निखाद राज को भी बूढ़ एक कहे सगुन बिचारी। देखो राम जी ने सुमंत का आदर किया, आदर कीन पिता सम लेखा, तो गया हुआ राज्य बन गया। हनुमान जी ने जामवंत जी का आदर किया तो लंका में सफलता पाई, समुद्र पार करके गए। और रावण ने माल्यवंत का आदर नहीं किया। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री पर, रावण का नाना वयोवृद्ध और रावण ने कहना नहीं माना। परिणाम मैं कहता हूं जहां वृद्ध का अपमान होता है उसका अपना घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना नहीं रह सकती। इसलिए वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। और निखाद राज ने कहा नीक कहे बूढ़ा, वृद्ध व्यक्ति ठीक बोल रहा है, सहसा करी पछताए बिमूढ़ा, तैयारी करे। हम पहले मिलने जाएंगे, भेंट से पता लग जाएगा। और निखाद राज ने भेंट सजाई,
अस कही भेंट संजोवन लागे, अस कही कंद मूल फल खग मृग मांगे, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार आन आने, कंदमूल फल खग मृग। अगर वृत्ति सतोगुणी होगी तो कंदमूल फल पर दृष्टि जाएगी, रजोगुणी चंचलता वाली वृत्ति होगी तो खग मृग पर दृष्टि जाएगी, और तमोगुणी वृत्ति होगी तो मछली पर, मछली कुछ नहीं पानी से बाहर निकालो मर गई, ये कुछ करने वाले तो है नहीं।
पर सेना को छिपा दिया। एकादराज गए देख दूर इतने कही निज नाम कीन मुनि सही दंड प्रणाम। मुनि को दंडवत प्रणाम किया दूर से। आहा, पर वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया निखादराज को नहीं, श्रृंगवीरपुर के राजा को नहीं, किसे आशीर्वाद दिया? जान राम प्रिय दीन असीसा, ये राम जी का प्रिय है इसे आशीर्वाद। भरत जी ने पूछा गुरुदेव यह कौन? भरत ही कहे बुझाय मुनीषा, श्री भरत जी से कहा यह राम सखा। यह नहीं कहा निखादराज, यह नहीं कहा श्रृंगवेरपुर का राजा, ये राम जी का सखा है। और राम जी के सखा का नाम सुनते ही भरत जी ने रथ छोड़ दिया। राम सखा सुनिस्यंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अयोध्या राज्य के अंतर्गत छोटी सी रियासत श्रृंगवीरपुर, और तुम इस समय अयोध्या के राजा के पद पर बैठे हो, तो अयोध्या का राजा एक रियासत के जमींदार को देखकर रथ छोड़कर नीचे उतर जाए, ये मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं है। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव आपने कहा राम सखा, मैं निखादराज को देखकर नहीं, श्रृंगवीरपुर के राजा को देखकर नहीं, राम जी के सखा को देखकर। सखा बराबरी के होते हैं और सेवक छोटा होता है। मैं सेवक हूं, निखादराज सखा हैं, और सखा धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह ठीक नहीं। वशिष्ठ जी के नेत्र भर आए। भरत बस मैं यही सुनना चाहता था, सचमुच तुम्हारे जैसे तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। निखादराज दंडवत कर रहे हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए, और मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाए। जैसे लक्ष्मण जी मिल गए, निखादराज के रूप में भरत जी को लक्ष्मण जी मिल गए। और रात्रि को विश्राम करते समय जब निखादराज ले गए राम जी की सैया दिखाई, वहां स्वर्ण बिंदुओं को देखकर राखे शीश सीय सम लेखे, स्वर्ण बिंदुओं में सीता जी का दर्शन हुआ। और दूसरे दिन राम घाट को देखा, तो राम घाट का कीन प्रणामो भा मन मगन मिले जनु रामो, जैसे राम जी की प्राप्ति हो गई हो। और यही मैं कहता हूं, श्री भरत आज श्रृंगवीरपुर में ही विश्राम कर रहे हैं। अरे जिनके हृदय में राम जी होते हैं उन्हें सब जगह राम जी का दर्शन होता है। श्री भरत को सब जगह श्री सीता राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। देखो निखादराज जगत से जुड़े हैं, पर उनमें लक्ष्मण जी दिख जाएं, स्वर्ण बिंदुओं में सीता जी दिख जाएं, इसका मतलब है कि मन हमारा वासना से उपासना में चला गया है, जगत से जगदीश की ओर चला गया है, प्रपंच से परमार्थ की ओर चला गया है। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह कथा सुनेंगे मन करी विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो यही सर पर। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की बात।
बांके बिहारी लाल
आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की
आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की
सिंहासन सोहे युगल सरकार परस्पर हसेरत मधुर कछु बोल ले तो मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दया मई जनक दुलारी की
आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की
पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद
पंकज होत निहार
कातर भुराई धन्य सेवकाई पवन सुत गिरिवर धारी की दया मई जनक दुलारी
आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी
भरत जूठाणे भाव विभोर लखन रिपुदमन लाल कर लखे मुख चंद ले तयानंद धन्य शोभा धनुधारी की दया मई जनक दुलारी
आरती अवध बिहारी जनक दुलारी
आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे शरण राजेश त्रवे अवधे बोलिए जय भयारी की दया मई जनक दुलारी
आरती अवध बिहारी दया मई जनक दुलारी अवध बिहारी दया मई जनक दुलारी जय जय मैया जनक दुलारी
जय जय जनक दुलारी की श्री सीताराम जी महाराज।